SBS Audio is supported by advertising.
If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय इतिहास में पहली बार महाकुंभ में 22 जनवरी को कैबिनेट मीटिंग रखने का निश्चय किया है। इसके अलावा महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। महाकुंभ के दौरान राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता भी स्नान में भाग लेंगे। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया और उसके बाद सरकारी अफसरों के साथ इन प्रस्तावित कार्यक्रमों के अलावा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन आने वाली भारी भीड़ के इंतजाम के बारे में भी चर्चा की। इसी दौरान महाकुंभ के मेला क्षेत्र में रविवार शाम करीब 4:30 बजे आग लग गई, जिसमें गीता प्रेस के 180 कॉटेज जल के खाक हो गए। प्रशासन के अनुसार आग गैस सिलेंडर के फटने से लगी और फैल गई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर एक घंटे में काबू पा लिया। मेले के चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने बताया कि करीब 500 लोगों को जलने से बचाया गया। इस घटना पर विपक्ष के कई नेताओं ने चिंता जाहिर की है। केंद्र की मोदी सरकार ने पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों को बातचीत का न्यौता दिया है। प्रस्ताव मिलने के बाद अनशन पर बैठे 70 वर्षीय किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हामी भरी और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया। शनिवार को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन श्री दल्लेवाल से मिले और उन्हें भारत और पंजाब सरकार की ओर से बातचीत का न्यौता दिया। श्री प्रिय रंजन ने कहा कि केंद्र सरकार को श्री दल्लेवाल की सेहत की फिक्र है और वे रास्ता निकालने के लिए आए हैं। उन्होंने श्री दल्लेवाल को केंद्र सरकार द्वारा लिखा पत्र पढ़कर सुनाया।
महोदय, यह SKM गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा KMM के नेताओं के साथ पिछली बैठक के क्रम में, जो कि फरवरी 2024 को चंडीगढ़ में हुई थी, किसान संघों की मांगों के संबंध में भारत सरकार एवं पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ एक बैठक 14 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर 26 चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। आप बैठक में सादर आमंत्रित हैं। कृपया नियत समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें। हम आशा करते हैं कि श्री दल्लेवाल जी जल्दी अपना अनशन समाप्त करेंगे और स्वस्थ होकर वार्तालाप में।
लेकिन श्री दल्लेवाल की निगरानी कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनका 14 फरवरी तक केवल मेडिकल ट्रीटमेंट पर जिंदा रह पाना मुश्किल है। किसान नेताओं ने कहा है कि वे श्री दल्लेवाल को खाना खाने के लिए मनाएंगे, जबकि कुछ किसान संगठन बैठक का समय इतने दिनों बाद रखने से नाराज हैं और श्री दल्लेवाल की हालत को देखते हुए उसे जल्दी किए जाने पर जोर दे रहे हैं। अभी तक किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर एक राय नहीं बनाई है और ना ही कोई जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के RG कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सियालदा स्थित ट्रायल कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 20 जनवरी यानी आज किया जाएगा। अदालत का यह फैसला 162 दिन बाद आया है। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग की है। आरोपी के परिवार ने इस घटना पर ट्रायल कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें कि सरकारी आरजी कर अस्पताल में पिछले साल 8 और 9 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार और हत्या हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के नागरिक स्वयंसेवक को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुए थे। अदालत ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया, जिसके अनुसार संजय रॉय इस घटना में शामिल था। घटनास्थल और पीड़ित डॉक्टर के शरीर पर भी संजय रॉय का डीएनए मिला था। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम की राजधानी गुवाहाटी में शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज कराने वाले वकील मोनजीत चेतिया ने आरोप लगाया है कि श्री गांधी ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए हैं। एफआईआर भारतीय नागरिक संहिता की गैर जमानती धारा 152 और 197 एक डी के तहत दर्ज की गई, जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों का हवाला दिया गया है। परिपेक्ष में आपको बता दें कि 13 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक समारोह में कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाना जाना चाहिए और इसे ही भारत का सच्चा स्वतंत्रता दिवस मानना चाहिए। इसके दो दिन बाद श्री गांधी ने श्री भागवत के बयान के जवाब में कहा था कि भाजपा आरएसएस ने हर संस्था पर कब्जा कर लिया है और अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले सभी राजनीतिक दल जनता को लुभावने वादे देने में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प घोषणा पत्र जारी किया, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकसित दिल्ली की नींव बताया।
हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी। हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा।
उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने अनेक वायदों में सफाई कर्मचारियों के लिए पक्का मकान मुहैया कराने का एक नया वायदा जोड़ दिया है।
एनडीएमसी के और दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों से इस योजना की शुरुआत की जाए जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन दे, दिल्ली सरकार उस पर घर बनवा दे और सभी सफाई कर्मचारी आखिरी के अपने कुछ सालों में अपनी तनख्वाह में से उसकी किस्तें कटवा के और जब तक रिटायर हों तो रिटायरमेंट में उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर उन लोगों को मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसके लिए राजी होगी, प्रधानमंत्री जी इसके लिए राजी होंगे क्योंकि गरीबों के बारे में है। तो पहले सफाई कर्मचारियों से इसकी शुरुआत करते हैं, एक बार ये शुरू हो गई स्कीम तो फिर अन्य कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसको लागू किया जा सकता है। तो ये बेहद कल्याणकारी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं लागू रहनी चाहिए तो नई नई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू होनी चाहिए। ये एक नई कल्याणकारी योजना मैंने आज प्रधानमंत्री जी को भेजी है।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले में संलिप्त व्यक्ति को पकड़ने का दावा किया है। मुंबई पुलिस उपायुक्त दीक्षित गेडाम के अनुसार आरंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी शायद बांग्लादेशी नागरिक है और वह चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था। मुंबई पुलिस ने हमलावर को ढूंढने के लिए 35 टीमें लगाई थीं और घटना से 10 से 15 दिनों पहले की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली थी। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक श्री सैफ अली खान की तबीयत ठीक है और उन्हें आईसीयू से सामान्य कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.